ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் புஷ்பதன்ஸ் சிவ மஹிம ஸ்தோத்ரா இன் ஹிந்தி, ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி நிஷ்தானந்தஜி சரஸ்வதி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
तो किया तो किया, लेकिन आज के नए संदर्भ में तो ये सोचना होगा कि अब आखिर ये जो हमारी प्राचीन दृष्टि को ध्यान में रख करके हम निश्चय करें ईश्वर के स्वरूप का, या इस समय जो ये तथा कथित लोग जो ईश्वर के बारे में कुछ तर्क देते हैं उनके तर्क के बल से हम ईश्वर के स्वरूप का निश्चय करें। आज हम इस मोड़ पर खड़े हुए कि हमको क्या करना है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्य के द्वारा जो कठोर तपस्या के बल से जिन्होंने ये संशोधन किया है, और तर्क युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा वैदिक वाक्य को और ज्यादा मजबूत और दृढ़ करके जो हमारे सामने ये निष्कर्ष रखा है, क्या हमको उनकी रक्षा करनी है, या ऐसे ही जो जिसके जीवन में कोई सदाचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, जीवन जीने की शैली में कोई नियम कानून नहीं है, ऐसे लोग जो है बैठे बैठे ईश्वर के बारे में तर्क युक्ति प्रयुक्ति बताए और कहे कि ईश्वर नहीं है, तो क्या हमको उनके ये सिद्धांत की रक्षा करनी है, ये हमको सोचना है। लेकिन हम अब विडंबना की बात यह भी है कि हमारे यहां जो ईश्वर के बारे में जो प्रमाण वाक्य है उनका इतना अप्रचार है, प्रचार नहीं क्या है, अप्रचार है, अप्रचार है या अपप्रचार है, ये दोनों बातें हैं। अप्रचार भी है यानी कि हम लोग वैदिक सनातन धर्मावलंबी होते हुए भी हम अपने ये प्रमाण को नहीं जानते कि वेद क्या है, श्रुति क्या है, स्मृति क्या है, सूत्र क्या है। हम लोग यही समझते हैं कि ये श्रुति स्मृति और सूत्र ये इनका विचार करना ये केवल साधु लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। साधु लोग जो है वो इस बारे में विचार करते हैं, न जाने क्या विचार करते हैं, हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए हम अपने को उससे अलग और जुदा कर लेते हैं। इसलिए हम नहीं जानते वेद क्या है, श्रुति स्मृति सूत्र क्या है। आज पूछा जाए हमारे बच्चे ही हमको यदि पूछे कि आप ये ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं, आप कथा में जा रहे हैं, ये पूजा उपासना कर रहे हैं, आखिर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कोई जवाब है क्या? यहां जो आ रहा है वो तो बताएंगे, यहां उनको तो पता है ईश्वर क्या है, प्रमाण क्या है, क्या जवाब देना है, लेकिन ये तो एक आम सनातन धर्मावलंबी की एक आम बात है, सबके लिए विचारणीय विषय है। क्योंकि आजकल बात यह भी है कि हमारे शास्त्रों का जो अभ्यास है उनका भी स्वरूप और उनका प्रचार ऐसा सिकुड़ता जा रहा है ताकि हमारी उसको और ध्यान ही नहीं जा रहा, इसलिए हम न जाने कैसे अवैदिक धर्म का समर्थन जाने अनजाने में कर रहा है, इन बातों का हमको ख्याल नहीं रहता कि हम तो यही सोचते हैं कि हम ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक के पीछे हम अवैदिक धर्म का समर्थन तो नहीं कर रहे, ये हमारे सामने उसके लिए कोई मापदंड यदि हो तब तो हम समझ सकते हैं, यदि नहीं तो हम जाने अनजाने में अवैदिक धर्म का समर्थन करके हमारे पर हमारे मूल पर हम कुठाराघात करते जा रहे, आज समय ये है। इसलिए स्वाध्याय अवश्य जानना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए ताकि हम जाने हमारे ऋषि और मुनि और आचार्य ने जो क्या कहा है। देखे यदि आप ईश्वर के बारे में हम कहें तो भगवान भाष्यकार ब्रह्मसूत्र भाष्य के दूसरे सूत्र में ये कहते हैं कि ये जो संसार है उनकी उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। जन्माद्यस्य यतः, जन्म स्थिति भंग यतः, जिससे उनको कहते हैं ब्रह्म परमात्मा। तो जैसे अभी कहा कि कोई कहे कि कैसे पता चले ये सारे संसार की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है, भगवान शंकराचार्य जी वहां ऐसे अकाट्य तर्क बता रहे हैं और कहते हैं देखो ये जो है ईश्वर के बिना इस प्रकार के संसार की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, पहले ही कहते हैं अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य। देखिए आप इस संसार में पाते हैं कि कर्ता और भोक्ता के स्वरूप को अनेक कर्ता, कोई ऐसे है जो केवल कर्ता ही करता है, कोई ऐसे है जो केवल भोक्ता ही भोक्ता है, वो कर्ता करता ही रहता है, भोक्ता भोक्ता ही रहता है। ये नियमन किसने किया कि ये कर्ता है ये भोक्ता है? क्या अपने आप हो गया? अनेक कर्तृ भोक्तृ से संयुक्त ये संसार है। फिर आगे कहा मनसापि अचिंत्य। भगवान भाष्यकार कहते हैं चार तर्क के द्वारा कहते हैं मनसापि अचिंत्य, यानी कि जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे अजूबे इस संसार में है जिसका चिंतन मन से नहीं कर सकते। अब बताइए अब वो अपने आप हो सकते हैं क्या? फिर एक तर्क ऐसा बताया है प्रतिनियत देश काल क्रिया फलाश्रयस्य। देखिए इस संसार में आप ये पाएंगे कि देश भी नियत है। देश देखिए और संसार के और देशों की बात मत करें, भारतवर्ष की बात करें। भारतवर्ष में हम देखते हैं कि जितने प्रांत है वहां पर आप जमीन को देखेंगे तो कहीं भी आपको एक जैसी नहीं दिखेगी। कश्मीर में जाएंगे वहां जो जमीन है वहां वो जो खेती होती है वो आप कन्याकुमारी जाएंगे तो वहां आप वो खेती नहीं होगी। आप ऐसे पश्चिम भारत में जाइए वहां जो होता है वह पूर्व में जाएंगे तो वहां वो नहीं होगा। सब जगह ये जो भेद है देश में वो देश के भेद जो है क्या अपने आप हो गए? प्रतिनियत देश। फिर काल लीजिए जो काल के भेद है। देखिए भामतीकार ने बढ़िया सुंदर दृष्टांत बताया कि आप काल का भेद देख सकते हैं कि देखिए कहीं एक पक्षी है जैसे कोकिला ही है। कोकिला का शब्द क्या इस समय आप सुन सकते हैं? उनका एक नियत काल है, वो नियत काल में ही आप जो है वो कोकिला का रव सुन सकते हैं, अब नहीं सुन सकते। कस्तूरी मृग ले लीजिए, वो जो है सर्वत्र उपलब्ध है क्या? क्या कारण है आखिर कि वो एक देश विशेष में ही रहते हैं? प्रतिनियत देश काल क्रिया जो है, क्रिया भी दिख लीजिए जो वैदिक क्रिया है, वो जो प्रस्तोता उद्गाता अध्वर्यु इत्यादि जो कर रहा है वो यजमान नहीं कर रहा, जो यजमान कर रहा है वो प्रस्तोता भी नहीं कर रहे। और फल के बारे में ले लीजिए, फल के बारे में जो हम आज देखते हैं कि क्या सबको एक जैसा कोई फल मिलता है क्या? तो एक जैसा फल क्यों नहीं मिलता है? आखिर इस फल के भेद में भी कोई ऐसी शक्ति होगी कि जो सबको जो है फल भिन्न भिन्न रूप से दे रही है, वो कौन फल देते हैं? क्रतौ सुप्ते जागृत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम। महिम्न स्तोत्र में हम लोग पढ़ते हैं क्वकर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन अमृते, ऐसा पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि क्रतौ सुप्ते, आपने कर्म तो कर लिया, यज्ञ कर लिया, पूर्णिमा से लेकर अमावास तक यज्ञ कर लिया, उसके उनके भी काल नियत है यज्ञ कर्म के भी, तो वो कर लिया ठीक है। अब वो एक काल आ जाता है समाप्त हो जाता है, चाहे अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक किया तो पूर्णिमा को समाप्त तो हो ही गया, वो जीवन भर तो वो चलता नहीं है कर्म। हमको बहुत सारे कर्म करने रहते हैं, एक को निपटा दिया, दूसरे को निपटा दिया, दूसरे को निपटा दिया, वो समाप्त हो गया। तो आखिर ये कौन ध्यान रखता है? ये कर्म किए हुए कर्म कहां रहते हैं जो हमको कालांतर में फल देते हैं? यहां तक कि कुछ कर्म ऐसे भी है जो इहलोक में भी फल देते हैं हमको कि चलो दो साल के बाद पांच साल के बाद या वृद्धावस्था में, जैसे हमने युवावस्था में इकट्ठी की हुई जो संपत्ति है, धन संपत्ति है जो बैंक में, वो उनका उपयोग जैसे हम वृद्धावस्था में करते हैं, तो वो बैंक वाले आपको वृद्धावस्था में पेंशन के रूप में देते हैं कि नहीं देते? क्यों देते? वो कहते हैं आपने यहां हमारे वहां जमा कर रखा है इसलिए हम दे रहे। जो जमा नहीं किया होता तो अब कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच जाए कि हमको दीजिए, तो वो बैंक वाले कहेंगे पासबुक दिखाइए, यदि दिया है तो लो, नहीं तो कहां से मिलेगा। इसलिए कहते हैं यदि हम कर्म किया है तो कर्म कहीं न कहीं जमा तो रहता होगा, कहां रहता है? हमारे अंतकरण में। क्या कभी देख सकते हमारे अंतकरण के न जाने कितने करोड़ों जन्मों के संस्कार भरे पड़े हुए हैं। यहां तक बंदर के भी संस्कार है, हम बंदर भी कई बार बने हुए, एक बार नहीं, कई जितने भी जीव है उन सब के संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए। भगवान भाष्यकार छांदोग्य उपनिषद में एक जगह बहुत ही हर बात इस बात की सिद्धि करते हैं कि एक व्यक्ति के अंतकरण में सारे संसार में जितने जीव है उन सब के संस्कार पड़े हैं, और संस्कार उसी के होते हैं जो बार बार क्रिया होती है, एक बार करने का संस्कार नहीं पड़ता। ये आप लोग को सबको पता है कि हम कुछ यही एक बार सुनते हैं तो याद रहता, तो संस्कार और अभ्यास वो कई बार करना पड़ता है। तो कई बार बंदर बने होंगे ना, तभी तो अभ्यास होंगे, तभी तो अंतकण में रहे होंगे। इसलिए वो अंतकण में रहते हैं और इनका ध्यान कौन रखते है? वही ईश्वर रखता है। इसलिए पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं कि भगवान ये कर्म तो जो है वो सुप्त हो जाता है फिर, लेकिन आप वो जगते हैं, ध्यान रखते हैं। देखिए हम लोग सो जाते हैं तो हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है, शरीर को कौन चलाता है पता है? अच्छा प्राण चलता रहता है कि वो भी सो जाता है? प्राण वो तो जो खर्राटे सुन रहा है उनको पता है कि ये कौन सो रहा है, तीसरे कमरे में आवाज आती है नहीं है? वो तो सो रहा है मस्ती से, उनको पता है नहीं कि अब मेरा क्या हो रहा। किंतु प्राण जो है जैसे चलता रहता है और इस शरीर की रक्षा करता रहता है, भगवान ने ये ऑटोमेटिक व्यवस्था तो बना नहीं रखी क्या? हमको हाथ हिलाना है तो इच्छा करनी पड़ती है, पैर उठाना है तो इच्छा के बल पर, बोलना है तब भी वो इच्छा के बल पर, यदि देखना है सुनना है चाहे ज्ञानेन्द्रिय से, कोई भी ज्ञानेन्द्रिय से हमको ज्ञान करना है, कर्मेन्द्रिय से कर्म करना है, तो हम पहले मन में इच्छा करते और इच्छा इस विषय नहीं होती जिस विषय का हमको ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है इस विषय नहीं, इच्छा होती है और इच्छा के अनुसार हम कृति करते हैं। नहीं एक लोग कहते हैं कि कोई भी कर्म के पीछे ये तीन कारण होते हैं, ज्ञान चिकित्सा और कृति, तब जाकर के आपको कर्म फल मिलता है। तो अब बताइए अब प्राण के लिए क्या आपको ये करना पड़ता है? प्राण अपने आप चलता ही रहता है। क्या अभी क्या कभी आप ये कहते हैं कि हमको अब श्वास लेने का काम है, अब हमारे पास हम दूसरा काम नहीं कर पाएंगे, ये श्वास लेने का काम है, अब हम श्वास नहीं लेंगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, इसलिए पहले हम श्वास लेते रहे। अब बताइए श्वास लेते रहे तो और काम कब करेंगे? इसलिए भगवान ने ये जो ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अब ये व्यवस्था को कौन बना सकता है? क्या ईश्वर के सिवा और कोई ये संभव है क्या? कुछ जो है अवैदिक धर्मावलंबी कहते हैं जीव तो है, अब जीव की बात ले लीजिए, जीव की शक्ति कितनी है? जीव को ये भी पता नहीं हमारे शरीर में क्या हो रहा है। डॉक्टर को भी पूछ लीजिए तो वो भी जो है मशीन का सहारा लेकर के वो बताते कि तुम्हारे शरीर में ये हो रहा है, उनको भी पता नहीं है। उन्होंने जो है अपने 25 साल जो है अध्ययन में लगाए, 25 साल तक उन्हें रात दिन वो जो है बड़े बड़े इतने इतने थोथे पढ़े हुए हैं, उनको भी आप कहे कि मेरे को ये हो रहा है तो पहले आप मशीन के सामने आ जाइए, वो भी मशीन के ऊपर विश्वास करता है। वो जो जड़ मशीन है जो बोलती नहीं है चलती नहीं है मशीन, वो भी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई है, उनमें देख करके आपको ये रिपोर्ट कर देते कि आपको ये हो रहा। अब ये जो भगवान के द्वारा जो बनाई चीज है जिसके अंदर प्रामाण्य का विचार करके बताया गया है, उसके बारे में हम कहते हैं कि न जाने कैसा लिखा होगा, न जाने ईश्वर होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो डॉक्टर बता देते तो वो सब होता है। वो कहते हैं कैंसर हो गया तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं, क्या देखा कैंसर? लेकिन वो बता रहा है, हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में या धर्म के बारे में या इस प्रकार के अध्यात्म के बारे में बात आती है तो हमारे पल्ले ये बात नहीं पड़ती है। ज्योतिष कहता है कि तुमको 7वें स्थान में शनि है तो हम क्या कहेंगे? होगा ही होगा। वो कहेंगे कि खर्च करना पड़ेगा, आपको सब ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी कीजिए, जरा हम जो भी कहेंगे वो देने के लिए तैयार है। और वो वेद के पास जाएंगे तो वो क्या कहेंगे? वात पित्त और कफ में वैषम्य आ गया है, बस हम आपको दवा देते हैं ठीक हो जाएगा। और जो अखबार में बड़ी बड़ी वो आती है ना कॉलम में, और सब एड्रेस भी अंदर दिया जाता है, चारों ओर से जो निराश व्यक्ति हमारे पास आए ऐसा लिखा हुआ आगा पाएंगे, हमारे पास कोई भी व्यक्ति निराश नहीं गया, हम कोई भी काम कर सकते हैं चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसमें पूरा लिस्ट हुआ रहता है कि ये काम हम कर सकते हैं। वहां भी जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आपको भूत का प्रवेश हो गया, आपके शरीर में प्रेत का प्रवेश हो गया, वो निकालना पड़ेगा। ये बहुत चल रहा था कुछ समय पहले, आजकल तो थोड़ा कम हो रहा। तो ये सब जो है हम उसके ऊपर तो विश्वास करते हैं, किंतु ये भगवान के वचन के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए आप लोगों को ये पता जरूर चल गया कि स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है। स्वाध्याय यदि हम करेंगे तो हम ये सारी बातों का जवाब संसार में किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय अभ्यसनम, और इसी को भगवान ने वाणी का तप कहा। स्वाध्याय का अभ्यास यानी कि वेदाभ्यास, वेदाभ्यास का अर्थ ये नहीं कि आप ऋग्वेद आदि शास्त्र ही पढ़े, ये जो ये अभी वेदांत परिभाषा चल रही है उनका अभ्यास वो वेदाभ्यास है। क्योंकि ये वेदांत क्या है, ये तो वेद है, और उनकी परिभाषा में क्या होगा, आप आम ले आए, बढ़िया से बढ़िया आम ले आए, तो क्या आप आम पर तोड़ने गए थे क्या? आम ले आए, बाहर से बढ़िया दिख रही है, एकदम पीली पीली सी, सुगंधि भी बढ़िया आ रही है, और आप उसके अंदर फिर इसको वो चप्पू से वो समारेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से बढ़िया रस निकलेगा। वो रस कहां से आया? आम से। यदि आम केसर कैरे का है तो वो कैरे, वो जो आम आम्रफल है उसमें भी कौन सा रस आएगा? वो आपस का आएगा नहीं, तो आखिर ये नियंत्रण है कि नहीं इसमें भी? तो वैसे ही ये जो परिभाषा में क्या आएगा, जो उसका वेद का रस है वो इसमें आएगा। वो पुराणों में नहीं कहते निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम इत्यादि जैसे कहते हैं कि नहीं? बस वो दृष्टांत समझ लीजिए, यहां पर भी वो इस तरह ये है। तो ये वेद का अभ्यास और इनको वाणी का तप कहते हैं, समझ में आए? ये है वाणी का तप। और संक्षेप से मैं आपको मानस तप बता दे रहा हूं। मानसम तप क्या है? तो देखो कहिए, कहते हैं भगवान मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्ये तत्तपो मानसम उच्यते। कहते देखो मन का प्रसाद, मन का प्रसाद क्या? प्रसाद यानी कि स्वस्थता, मन स्वस्थ हो, चिंता या उद्वेग से रहित हो, वो कब रह सकता है? आप लोगों ने कभी पाया कि मन स्वस्थ प्रसन्न कब रहता है? कि पाप कर्म करने के बाद या पुण्य कर्म करने के बाद कब रहेगा प्रसन्न? देखिए पुण्य पाप कर्म करने वाला जो है वो पाप कर्म तो कर लेगा, लेकिन वो पाप ऐसा है ना, वो अपने जहन में आता है तो वो स्थिर नहीं रह पाता। पुण्य आता है अपने जहन में तो वो स्थिर रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। और पाप जब आता है, क्योंकि है ही वो अस्थिर, वो आएगा तो आपको अस्थिर करेगा ही करेगा, और वो बड़ा भारी है, इसलिए वो आपको उसका भार भी लगेगा। अब भार को आप उठाते हैं तो मन प्रसन्न रहता है या अप्रसन्न रहता है? आप कहेंगे कि भार को फेंको तभी शांति मिलेगी। अब भार उठाते उठाकर जा रहे, उठाना पड़ रहा है, घर में जाकर के ऐसा फेंकते हैं और ऐसे आराम से बैठ जाते हैं कि बस थोड़ी देर आराम कर ले, तो प्रसन्नता कब आएगी? भार कम होगा तब। तो भार तो कई प्रकार के भार है, अब उसमें नहीं जाना है हमको क्या भार है, किंतु इतना समझिए कि मन प्रसन्न रहना चाहिए। वो प्रसन्न कब रहेगा यदि हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे, शास्त्रानुकूल बनाएंगे, और जैसे ये कहा जा रहा है पीछे शरीर वांग्मय और सबको ये सम्मिलित करते हुए अपने जीवन को बनाएंगे, तब जरूर मन स्वस्थ होगा। तो ये मन की जो स्वस्थता है, वैसे आचार्यों ने मन प्रसाद का अर्थ किया विषय चिंता व्याकुल राहित्यम, विषयों की चिंता से जो व्याकुलता हो रही है वो व्याकुलता से रहित मन हो, तब उसको कहते हैं मन प्रसाद। फिर सौम्यत्वम, सौम्यत्वम क्या है? सौम्यत्व का अर्थ जो है आचार्यों ने किया अक्रूरता। अक्रूरता समझ में आए? क्रूरता का अभाव, क्रौर्यता का अभाव, किसी के प्रति हम कभी क्रूर न बने, सबके लिए हम सॉफ्ट बने। तो देखिए इससे जो संसार में शांति फैलेगी वो क्रूरता से कभी नहीं। क्रूरता से परिवार में शांति नहीं फैलती है तो संसार की शांति की जो बात करने वाले तो वो वैसे ही पहले ही अक्रूर होते हैं, और संसार में शांति फैलाने की बात करते हैं। तलवार के बल से कहीं संसार में शांति फैल सकती है क्या? तो अक्रूरता, अक्रूरता सर्वलोक हितेशित्वम, मन में सर्वलोक के प्रति हितेशीपना हो, वो सौम्यत्व है। और देखिए आगे कहा मौनम, मौनम ये क्या है? मन का तप है। मौनम यानी कि चुप रहना, मौनम यहां नहीं है। आचार्य शंकरानंद जी बहुत सुंदर ढंग से यहां पे लिखते हैं कि मौनम का अर्थ है कि आप एक महीना तक, दो महीना तक, छह महीना तक कुछ बोले नहीं, वो मौन नहीं है। वो यदि मौन कोई यहां पे तप किया कहा यदि जाए तो कहते हैं वो तो पशु भी नहीं बोलते। तो क्या पशु को तप का फल मिलेगा क्या? ऐसा आचार्य शंकरानंद जी ये गीता की टीका लिखते समय ऐसा यहां लिखते हैं, कहते हैं मौनम का अर्थ है श्रवण मनन निधि ध्यासन करना। मनन मुनिर भावम मौनम, मुनि मुनि का भाव क्या है? बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मौनम का अर्थ है मनन। मनन किसका? जिसका हम ये जो श्रवण कर रहे हैं उनका मनन, ये है मौन। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं है। संसार में प्राय ये माना जाता है ये मौन रह रहा है बड़ा तपस्वी है, ये नहीं। मौनम का अर्थ है मनन करे, ये मन का तप है। देखिए फिर कहा आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह क्या है? मन, आत्म का अर्थ है मन, उनका विनिग्रह या विषयों से उनका प्रत्याहार। और भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि क्या है? व्यवहार में जो है माया राहित्यम, व्यवहार हम ऐसा करें हम वस्तुसत व्यवसाय करें। व्यवसाय का अर्थ पता है? व्यवसाय क्या है? जो बोल दिया वो बोल दिया, चाहे वो घाटा हो चाहे लाभ हो, अब बोल दिया सो बोल दिया, व्यवसाय ऐसे ही चलता है आजकल। इसलिए व्यवसाय को नहीं बोलते, बिजनेस बोलते, अभी बोला अभी फूक, इसलिए कहीं विश्वासार्ह नहीं है। व्यवसाय का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में व्यवसाय शब्द का प्रयोग किया, व्यवसायत्मिका बुद्धि। भगवान भाष्यकार वहां अर्थ करते हैं व्यवसायत्मिका, अर्थ करते हैं निश्चय आत्मिका। एक जो निश्चय वो निश्चय, देखिए व्यवसाय का स्वरूप यही है, जो व्यवसाय करते हैं वो जानते हैं कि निश्चय एक बार बोल दिया वो बोलने पर ही व्यवसाय चलता है। आजकल तो चाहे लिख करके दो तब भी वो फाड़ के फेंक देंगे कि मैंने तो तुमको कहा ही नहीं, ये व्यवसाय का स्वरूप हो गया। तो व्यवसाय में माया राहित्य, तो वो है भाव संशुद्धि। इति एतत्, ये सब मन के तप है। तो मैंने आपको ये बताया गीता में तप का स्वरूप, कि शरीर का तप क्या है, वाणी का तप क्या है और मन का तप क्या है। हम लोग संसार में जिस प्रकार की प्रसिद्धि से जो हम ये तप को जानते हैं, ये भगवान की दृष्टि से तप का स्वरूप ये है। आप सब लोग ये गीता के 17वें अध्याय में देखें, और भगवान ने आगे सात्विक राजसिक और तामसिक भेद बताए हैं, उन भेदों में से हम सात्विक कोटि का तप करते रहे और अपने जीवन का कल्याण करें, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत।
हरिओम, पूज्य महाराज जी के पवित्र चरणों में वंदन करते हैं। ऐसे समझे तो तीन दिवसीय, क्योंकि बीच में भी एक स्व की हमें पहचान महाराज जी द्वारा हुई और अभी दो दिवस हमने तप के बारे में महाराज जी से सुना। भारत के एक बड़े विद्वान सर्वप्रथम विदेश की धरती में गए थे और पहला शब्द उन्होंने बहुत ही अच्छे फिलोसोफर्स और दुनिया भर के सुप्रसिद्ध व्यक्ति के बीच में जो उन्होंने उद्बोधन किया वह था माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। अभी यह हिंदुस्तान में तो बहुत ही मामूली रीत से मेरे भाइयों बहनों की बात होती है और वहां जब ये बोला गया तो कई समय तक तालियों से उनका स्वागत हुआ जो भारत की दृष्टि से पहले संत वहां गए थे। कारण क्या था यह हम सोचे कि एक ही शब्द जो उनको इतनी प्रसिद्धि दे गए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, तो जब भी आप बोले तो सामने कौन से श्रोता है, सामने कौन सुनने वाले हैं, उसका क्या प्रतिभाव होगा वह देखें। और दूसरी बात, जिस संस्कृति से वो पधारे थे भारत की, तो भारत की जो गरिमा है भाइयों बहनों जो वहां नहीं है, जो वहां ये लोग तरसते हैं, ऐसी वाणी को तरसते हैं, ऐसे विद्वान वक्ताओं को तरसते हैं, ऐसी संस्कृति को तरसते हैं। तो जब भी कोई भी बात आप आज की तारीख में ही समझे तो हम ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि कुछ घंटों बाद क्या होगा। तो जो वाणी हम बोले, कल ही मुझे बनारस से फोन आया कि भाई क्या हाल है वहां का। उन्होंने तो पहले 15 मिनट तक बहुत बात चलाई, आपको महाराज जी पता होगा, आप तो हरिद्वार के हैं तो बनारस हरिद्वार अयोध्या वगैरह में जिस तरह से बात होती है। मैंने बोला यहां बम्बे तो बड़ा शांत है, पता नहीं कल बड़ी शांति है, कुछ नहीं है, स्कूलें चालू है, सब व्यवस्थित है। तो बोला अगर जो हमारी धंधा की राजधानी बम्बई है वहां कुछ नहीं है तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। तो यह हमारी गरिमा होनी चाहिए जो भी बात हम कर रहे हैं किसी वक्त में कर रहे हैं, क्योंकि बूंद बूंद से सागर होता है। तो जो महाराज जी ने जो तीन बातें हमें बताई वह बहुत ही जरूरी है कि जीवन के हर मोड़ पर वाणी व्यवहार, अगर आपको कोई स्थान मिला है तो किसी को मजाक में न ले और उसको कल अपनी तरफ भी कोई मजाक आ सकती है, तो अगर उसकी प्रतिकार करने की अपनी ताकत है तो किसी को मजाक करे। और जो महाराज जी ने छोटी छोटी बातें जीवन में मगर बहुत ही मान्य रखती है, ऐसी महाराज जी ने जो वाणी हमें यहां प्रदान की, आप सबकी तरफ से महाराज जी को हम वंदन करते हैं। महाराज जी अभी जो 9:45 से 9:30 बजे तक की बात बताई, आप सबसे प्रार्थना है कि आज की जो स्वाध्याय है, आज महाराज जी जो स्वाध्याय का आखिरी दिवस रहेगा उसमें जो एक महीने तक उन्होंने वेदांत परिभाषा के बारे में जो भी बातें बताई है वह बताने वाले, तो जिससे आपको अभ्यास भी होगा कि वेदांत परिभाषा क्या है। कल और परसों हमारे परम पूज्य धर्मानंद जी महाराज है, वह वेदांत परिभाषा पर ही दो दिवसीय उनका भी प्रवचन है। तो वेदांत परिभाषा क्या, उसमें कितने गुण है और किस रीत से वेद की रुचि बढ़ाने के लिए उपयोगी है वह बात कल परसों में बताएंगे। मगर आज का सत्र बहुत ही जरूरी है, आप 9:45 से 9:30 बजे तक जरूर से बैठे, क्योंकि जो वेदांत परिभाषा अभी अभी शुरू हुई है और महाराज जी उसकी बातें पूरी आपके सामने रखने वाले हैं। तो आप सबसे विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बैठे, क्योंकि स्वाध्याय की जो महाराज जी ने बात बताई कि शब्द को लेकर, हर एक श्लोक को लेकर, हर एक मंत्र को लेकर यह जो चल रहा है और सालों साल तक एक एक पुस्तक चल रहा है, तो उसका कारण क्या है और उसमें कितनी रुचि अपनी बढ़नी चाहिए, उसके बारे में आप जरूर से, आपसे फिर से विनती करते हैं कि आप जरूर से बैठें। 9:45 से 9:30 महाराज जी स्वाध्याय कराएंगे। अगले साल पूज्य महाराज जी का जनवरी 2011 में पूरे मास 1 से 31 तक स्वाध्याय प्रवचन होगा। आप सबकी तरफ से फिर से महाराज जी को वंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित श्री धनेश जसवंतलाल मेहता स्मृति व्याख्यान माला के अंतर्गत श्रीमती चित्रा आनंद के भजन एवं पूज्य श्री हरिभाई कोठारी द्वारा निंदनीय जीवन इस विषय पर प्रवचन होगा। समय 5:15 से 7:30 के दरमियान। कल परसों और 3 तारीख तक प्रतिदिन सायं प्रेमपुरी दिव्य पथ आयोजित चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ आधुनिक जीवन की चुनौतियां यह सुंदर विषय को लेकर परम पूज्य हमारे संस्था के अध्यक्ष विश्वेश्वरानंद जी महाराज की अध्यक्षता में यह जो कार्यक्रम होगा जो सायं 5 से 7:30 के दरमियान कल परसों और 3 तारीख तक चलेगा, तो इसमें कई विद्वान पधारेंगे। आप सबसे विनती है कि आप भी जरूर से पधारें और आपके परिवार में जो भी अपने बच्चे हैं यंगस्टर्स उसको जरूर से भेजें, क्योंकि यह बहुत जो चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न लाइफ आधुनिक जीवन में किस तरह के हमें चुनौतियों का सामना करना है उसकी बातें हमारे बीच में आएंगी। आज के श्रेय समिति के यजमान है श्रीमती शांताबेन ठाकुरदास देसाई की ओर से आपके जन्मदिन के निमित्त पर, श्रीमती भागीरथी सी दोषी की ओर से श्री अरविंद भाई सी दोषी के स्मृति में, श्रीमती चुमनबाई टी छाबड़िया की ओर से श्री ठाकुरलाल एम छाबड़िया की स्मृति में, श्री राजेंद्र जी दोषी की ओर से श्री जयंतीलाल जी दोषी की स्मृति में। आप या आपके परिवार के सदस्य यहां उपस्थित हो तो पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करें। अब शांति पाठों का हरिओम।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ब्रह्मार्पण।